நமோரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயரியாழம் நமோ உபத்யாயாழம் நமோ லோயே சவ்வசாஹுடம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயன் தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் காவுண நமுக்காரம் ஜினவணு பசஹஸ் பட்டமாடஸ் தன்சன மக்கம் பூச்சாமி ஜஹா கம்மம் சமாசேன. अभी जो गुरुदेव का चल रहा था विषय दर्शन पाहुड़ पर, हम तो बहाव पाहुड़ जो हमारे यहां चल रहा है वो विषय ले रहे हैं 32 गाथा 32. गुरुदेव श्री ने अभी जो विषय लिया उसमें तो समकिति के चिन्ह बताए हैं, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य. अष्टपाहुड़ ग्रंथ है. वैसे तो टोडरमल जी के समय 6 पाहुड़ प्राप्त थे, 8 पाहुड़ प्राप्त नहीं थे, इसलिए टोडरमल जी साहब ने उस ग्रंथ का नाम सटपाहुड़ रखा था, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जगह जगह टोडरमल जी ये कहते हैं कि सटपाहुड़ में ऐसा कहा है. बाद में 2 पाहुड़ और मिल गए तो अष्टपाहुड़ कहा जाने लगा. ये एक ग्रंथ नहीं है, सारे अलग अलग हैं, क्योंकि सबके मंगलाचरण अलग अलग हैं. कुंद कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे, लेकिन काल के गाल में सब समा गया और अष्ट पाहुड़ बचा. ये संघ की व्यवस्था के लिए ये ग्रंथ लिखा गया, मुनियों को मुख्य करके लिखा गया, जिससे कि मुनियों में शिथिलाचार ना हो. एक तरीके से कुंद कुंद परमात्मा ने उनके संघ में व्यवस्था में शिथिलाचार ना आए, जिनेश्वर का मार्ग सही चलता रहे, इसलिए ये ग्रंथ लिखा अष्टपाहुड़. इसमें टीका की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गाथा में से ही पर्याप्त भाव निकल रहा है. इसलिए अमरचंद्र आचार्य ने या किसी अन्य आचार्य को इस पर टीका लिखने का भाव नहीं आया, क्योंकि ये सीधा आदेश है. आदेश पे क्या टीका लिखे. भाव पाहुड़ हमारे यहां भी चल रहा है, तो भाव पाहुड़ के अंदर कुंद कुंद ये कहते हैं कि हे मुनि, आज तक बिना भाव के तूने अनंत जन्म मरण किए. इस 32 गाथा से अभी कल हमारे यहां 30 हुआ था परसों, और मैं परसों चला था वहां से, कल 31 हुआ, अब ये 32 आज शायद शुरू हुआ होगा वहां. गुरुदेव का नहीं, डेली के स्वाध्याय में. गुरुदेव का तो प्रवचन सार चल रहा है, और जो विद्वान स्वाध्याय कराते हैं उसमें भाव पावर चलता है. तो भाव के बिना तूने अनंत जन्म मरण किए, उसमें अनंत माओं का दूध पिया, यहां तक ऐसा ऐसा वैराग्य भरा वर्णन लिखा है कि अनंत बार गंदे गर्भावास में गया, और अनंतों बार यदि तेरी नाल को काटा जाए, बच्चे की नाल मां से जुड़ी रहती है ना, तो मेरू के मेरू पर्वत बन जाए, इतनी बार तू मां के गर्भ में गया। लेकिन हे मुनि, तूने भाव के बिना आत्म कल्याण नहीं किया। भाव माने कुंद कुंद प्रभु ने भाव का अर्थ किया, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये भाव का अर्थ किया। अब 32वीं गाथा जबरदस्त है, उसमें ये वर्णन है कि तूने भाव के बिना अनंत कुमरण किए। कुमरण विषय बहुत समझने जैसा है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको तो सब समझ में आ रहा है, पर बिना भाव के, बिना आस्तिक्य बुद्धि के, बिना रस के, उसके जीवन में दृढ़ता नहीं आती। और यहां तो मुनिराजों की चर्चा है। कुमरण किए माने हाय हाय करके मरा, सुबह से शाम तक। उन मरणों को यहां पर बताया है कि कैसे कैसे मरा। किसी दूसरे के लिए नहीं है बात, ये अपने ऊपर घटाना कि इसमें से हमारा कोई कुमरण तो नहीं हो रहा। भगवती आराधना में भी, अभी शायद जुलाई में आना होगा हमारा, तो मेरा भाव है कि शाम को समाधि मरण का विषय लिया जाए, संध्या काल शाम को, वो भी भगवती आराधना के माध्यम से। केवल देह के छूटने को मरण नहीं कहा, क्योंकि देह का छूटना तो द्रव्य मरण है, और वो तो आयु पूरे होने पर जब होगा तब होगा। लेकिन प्रतिपल प्रतिपल मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं पंडित संजय कुमार, यदि मुनिराज ये मानते हैं कि मैं मुनि, तो प्रतिपल भाव मरण हो रहा है। भाव मरण यहां तक लिखा कि हे जीव, आज तक तूने सम्यक मरण नहीं किया, माने भेद विज्ञान पूर्वक देह नहीं छोड़ा। एक जीव के साथ ऐसा कैसे संभव है? हम कैसे माने कि जीव को अधिकतम कितने भव संसार में रहना पड़ेगा? तो शिवकोटि आचार्य ने ग्रंथ में लिखा कि जो जीव एक बार सम्यक मरण करे, नाम मरण है और काम अमर है, कहने का है भाव, तो वो अधिकतम सप्तम या अष्टम भव में नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। नियम से प्रथम तो जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ है। कितने मुट्ठी भर हैं उसमें भी सर्वज्ञ भगवंतों का दर्शन दुर्लभ है। सुबह से शाम तक प्रपंच में लीन है जीव, उसमें भी जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसका श्रवण बहुत दुर्लभ है। ये कोई कहने की बात नहीं है। इस समय आप जो बैठे हैं या गुरुदेव का श्रवण करते हैं, वो ही समय सार्थक है, बाकी सब पाप का प्रपंच है भारी। उसमें भी आत्मदृष्टि होना बहुत दुर्लभ है, और आत्मदृष्टि हो जाने पर भी समाधि मरण होना अत्यंत दुर्लभ है। जरा बात सुनने में अटपटी लगेगी, प्रत्येक सम्यक दृष्टि का समाधि मरण हो ही जाए ये भी जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं है। आप कहोगे कैसे ऐसा भी होता है? कि हां, यदि किसी ने पूर्व में कुगति का बंध कर लिया है, जैसे राजा श्रेणिक ने नरकायु का बंध हो गया था, तो जिसके नरकायु का बंध हो जाता है उसके अंतिम समय हाय हाय करके ही देह छूटता है, उसको देह में ही तृष्णा बनी रहती है। यहां तक लिखा कि ये देह छूटकर अन्यत्र जाए तो लोग तो चंदन से देह जला रहे हैं, हर कोई लोग व्यवहार में अपने पिता को माता को स्वर्गवासी ही कहते हैं, लेकिन जब तक वो मुर्द घाट पर पहुंचे, शमशान में पहुंचे, तब तक उसी देह में निगोदिया बन जाता है, अन्यत्र नहीं, उसी देह में निगोदिया बन गया। मतलब देह एकत्व के फल में उस देह में ही निगोदिया जीव बन जाता है। ऐसा ऐसा कुमरण किया है इस जीव ने, वो बात इस 32वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं। यह हम तुम पर सब पर घटित होता है, ये विषय को गुरुदेव को भी पढ़ना, आप इसमें आएगा भी तो आपके लेट आएगा भाव पावड़ में, बहुत जबरदस्त। इससे भी पहले वैराग्य की इतनी गाथाएं हैं कि ऐसा लगे कि हम घर गलत जा रहे हैं। अंतर महूत में 66,336 बार जन्म मरण करता है, उसको क्षुद्र भव कहा, क्षुद्र भव। उसको अभी ले तो बहुत समय चाहिए, कैसे कैसे जीव मरण करता है बिना रत्नत्रय को धारण किए। और ये भी कुंद कुंद मुनियों को समझा रहे हैं, तो सब मुनियों को समझा रहे हैं, तो क्या मुनियों के भी ऐसा हो जाता है कि हां हो सकता है अनादि का जीव है। पद लेते समय तो वैराग्य अलग होता है, लेकिन पद आ जाने के बाद जगत की लोकेशण सताने लगती है, मन नहीं लगता। यदि आत्मबुद्धि नहीं है तो ये मार्ग में मन नहीं लगता, तरह तरह से जीव भटकने लगता है, अटकने लगता है। वो 32वीं गाथा में हम मिलकर पढ़ते हैं, देखिए। आगे इस संसार में इस जीव ने जन्म मरण किए हैं, वे कुमरण किए, अब सुमरण का उपदेश देते हैं। अन्य कुमरण मरणम अनेय जम्मम तराई मरीयोसी भावै सुमरण मरणम जर मरण बिनाड सणम जीव। हे जीव कुमरण मरण थी तू मर्यो अनेक भवो विषे तू भाव सुमरण मरण ने जर मरण ना हर नार ने। हे जीव इस संसार में अनेक जन्मांतरों में अन्य कुमरण मरण जैसे होते हैं वैसे तू मरा, कभी कुत्ता कभी बिल्ली, ऐसी ऐसी भारी वेदना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, आंखों से आंसू आ जाएं। गुरुदेव के समय कोई भाई गीत गाते थे, हमने डायरेक्ट नहीं देखा तो हम तो आप लोगों के मुख से ही सुनते हैं कि वो शायद रमेश भाई गाते थे कि हे भव्य तूने संसार में इतने दुख झेले कि उन दुखों को देखकर ज्ञानियों के आंखों में आंसू आ गए पर तेरे नहीं आए, आए भी तो तात्कालिक आई। हमें क्या ये विश्वास नहीं है कि मैं मर के कहीं दूसरी जगह जाऊंगा, और ये विश्वास नहीं है कि मैं मर के कहीं से आया हूं। कल वो श्रीमद जी के पत्र का रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उसने कहा अनंत भव के लिए एक भव, तो एक भव में पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा ना। प्रेम कभी दो से नहीं होता, और यदि दो से हो तो एक से भी प्रेम नहीं है। तो कोई जीव सोचे कि संसार भी सधता रहे मेरा और मोक्ष मार्ग भी सधता रहे, ऐसा है नहीं। ऐसे मरा कैसे कैसे मरा, अब तू जिस मरण का नाश हो जाए इस प्रकार सुमरण भाव अर्थात समाधि मरण की भावना भाव। और उस समाधि मरण में कौन सा समाधि मरण है और कौन सा कुमरण है वो बताती है। जितना होगा 10 बजे तक उतना लेंगे। 17 तरह के मरण बताई भगवती आराधना में और कुंद कुंद आचार्य ने इसी ग्रंथ में, कितने 17 तरह की। इसका स्वरूप इस प्रकार है, आयु कर्म का उदय समय समय में घटता है, वह समय समय मरण है, यह अवीच का मरण है। प्रतिपल प्रतिपल एक एक आयु कर्म का निषेक 6 को प्राप्त हो रहा है। जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, बताओ आयु घट रही है या बढ़ रही है, बोलते क्या है हम लोग, बोलते क्या है, सब बढ़ गई। पहले ये 50 के थे अब 51 के हो गए, बढ़ गई या घट गई, बढ़ना तो लोग व्यवहार है, बढ़ी कहां है, मृत्यु के नजदीक है, हर पल एक एक क्षण। अरे सत्य तो ये है, जिसको हम ये सोच रहे हैं कि ये अभी खत्म होने वाला है, कहो तो वो सालों जी जाए, और जिसकी हम सोच नहीं सकते, कहो तो अचानक अचानक देह विलय हो जाए, अचानक हमें लगता है अचानक हो गया, पर अचानक नहीं है वो, समय समय आयु कर्म के निशेक खिरती है, समय 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 समय, एक एक पल यहां बैठे हैं, और केवली के ज्ञान में आ रहा है कि देह कब छूटेगा, इसको अविचिका मरण कहा, ये भी सुमरण में नहीं है, ये ऐसा अनादिकाल से हमारे तुम्हारे साथ होता आ रहा है, और अभी भी हम यही कर रहे हैं, प्रतिपल मरण हो रहा है नहीं हो रहा, एक एक आयु कर्म छह को प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रतिपल मरण हो रहा है नहीं हो रहा, भाव मरण की बात नहीं चल रही है, द्रव्य मरण की बात चल रही है, अभी आगे आएगा इसमें, और इसमें ना कोई पुरुषार्थ होता ना कुछ होता, स्वयं ये ऑटोमेटिक चलता है, मालूम नहीं पड़ता। देव 100 वर्ष में एक श्वास लेते हैं, अब बताओ हमारी आयु कितनी हुई, लौकिक आयु उनकी एक श्वास के बराबर भी नहीं हुई, सागरों की आयु है, सागरों की। भगवान महावीर जब राजकुमार अवस्था में थे, तब उनकी मां ने उन्हें बहुत समझाया, बेटे अन्य तीर्थंकरों ने भी विवाह किया, तुमने क्यों नहीं करते हो, मां मेरी आयु थोड़ी है, उनकी आयु सागरों पर्यंत थी, इस थोड़ी आयु में मैं आत्म कल्याण भी कर लूं, विवाह भी कर लूं, ये मुझसे नहीं होगा। इसको अविचिका मरण कहा है, विस्तार से नहीं ले रहा मैं अभी, वर्तमान पर्याय का अभाव ये तद्भव मरण है, ये जो देह है ये छूट जाए, इसको तद्भव मरण कहा, इसको भी सम्यक मरण नहीं कहा, लाश पड़ी रह जाती है, कभी कभी तो पूर्व पाप के उदेश्य लाशों के परचक्खे उड़ जाते हैं, कोई ढूंढने वाला नहीं मिलता कि ये किस किसका जीव है, कौन है, क्या है। अभी हमारे यहां एक बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था आगरा अलीगढ़ रोड पे, लोकल बस का, लाशों की धड़ को मिला रहे थे, किससे मिलाएं, ये किसका है, देना है ना सबको, किसको किसकी दें, ये क्या दें, ऐसा भीषण हुआ, क्योंकि अरे तूने आत्मा की विराधना की है, तो सत्य तो यह है कि जो आत्मा की विराधना करता है उसकी देह को भी कोई ढूंढने वाला नहीं मिलता, उसकी कोई पहचान करने वाला नहीं मिलता, ऐसे अनंतों बार जन्म मरण हुए, एक बार नहीं, अनंतों बार, अनंतों बार, मतलब यदि कल्पना नहीं है, ये इफेक्ट है, कल्पना तो यह है कि जो हम सोचते हैं वो कल्पना है, हम जो दिन रात दिवा स्वप्न में रहते हैं, ये मेरी इतनी लंबी आयु है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, हम जो फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं, ये भाव मरण है, ये आचार्य कह रहे हैं ये तो परम सत्य है, ये परम सत्य है, हम हमारी जो थिंकिंग है वो कल्पना है, ये सत्य है। तद्भव मरण यही पड़ा देह रह जाता है। तीन तीन खंड के चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण जब देह छूटा तो पीने के लिए पानी नहीं था। इसी में आगे ग्रंथ में भाव पाहुड़ में कुंद कुंद ने स्वयं वो दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, इसमें भगवती आराधना में 18 मुनिराजों के नाम दिए हैं, सच कह रहे हैं, आपको सुन लो ना वो नाम कि कैसे कैसे उनपे भीषण उपसर्ग आया और किस तरह से अपने उपयोग को समेट कर अंदर स्वरूप के अंदर समा गए, जिसको बड़े समाधि मरण के नाम से जाना जाता है। हमको तो जरा सा कष्ट हो तो हम देहाशक्ति बड़ी समस्या है, अज्ञानी पाप के उदय में भी दुर्गति होती है और पुण्य के उदय में भी दुर्गति होती है, पाप के उदय में आर्त ध्यान करता है और पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान करता है, क्योंकि दुखी 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 क्लेश क्लेश क्लेश। तो ये तद्भव मरण है, देह का पड़ा रह जाना, देह का पड़ा रह जाना, ये भी सुमरण नहीं है, ये भी अनंतों वार किया। अब आगे जैसा मरण वर्तमान पर्याय का हो वैसा ही अगली पर्याय का होगा, वे अवधि मरण है, ये किसी किसी के होता है। थोड़ा करना नियोग का भी विषय है, लेकिन समझ में आएगा, वैराग्य भरा करना नियोग है ये एकदम। माने किसी ने मान लीजिए इस पर्याय में 90 वर्ष की आयु पाई और अगली पर्याय में भी वैसी ही 90 वर्ष की पाई, उसको कहते अवधि मरण। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ परिणामों के बल से ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो हम इस घर में रह रहे हैं और आपके घर का नौकर ही आपके घर में जन्म ले ले, ऐसा हुआ है, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हुए हैं ऐसे। जो मो का नाम सुना होगा आपने, मो अमायन, वहां पर एक व्यक्ति एक विधानाचार्य था, गाता था, और कैसे उसकी मृत्यु हो गई, वहीं उदीसी पर ही वहीं पर ही व्यंतर हो गया। अब वो आता है लोगों को और कहता है मैं कमलेश हूं, कमलेश है नाम उसका, को तो आपके घर में ही मोहल्ले में कुत्ता बन जाए और आप उसको घर में नहीं घुसने दो। बहुत विकट व्यवस्था है, कह नहीं सकते, लेकिन ये सब बातें सेकंड है। पहले ये तो विश्वास है कि आत्मा शाश्वत है, ये देह छोड़कर दूसरा देह ग्रहण करता है, यही धंधा चल रहा है अनादि से हमारा तुम्हारा, यही। मैं विस्तार से नहीं ले रहा, मुझे समाधि मरण पर पहुंचना है 15 मिनट में। अब आगे चौथा मरण, वर्तमान पर्याय स्थिति आदि जैसा उदय था वैसी अगली सर्वतो वा देश तो बंद उदय ना हो वे आद्यंत मरण है। माने अगली पर्याय में अलग ढंग का मरण होना वो आद्यंत मरण है, वैसा मरण नहीं होना। ये तो बहुत कम होता है, अलग अलग ढंग से ही व्यक्ति के बाहर में मरण इत्यादि होते हैं। सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। आप तो अभी जिस क्षेत्र में रह रहे हो वो दृश्य आपको देखने को नहीं मिलते। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, हमारे गांव में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि आज तक मैं देखता हूं तो मेरी आंखों में वो दृश्य जाता नहीं है कि एक सूकर को नीचे से पैरों से बांधा, फिर ऊपर पैरों से बांधा, फिर उसको डंडे पे लटका दिया और नीचे से आग लगा दी। चीखता रहा, पूरे मोहल्ले वालों ने किवाड़ें बंद कर ली, चीखता रहा जब तक मौत नहीं हो गई, जब तक मौत नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है अरे ऐसा हमारे साथ थोड़ी होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार। अरे तूने अपने पर दया नहीं करी तो तुझ पर कौन दया करेगा, ये नियम है। एक खंडहर में आप आत्मा बोलो, एक प्रतिध्वनि का सिद्धांत है जैन शासन में, विज्ञान में, और जैन शासन में प्रतिदान का सिद्धांत है। विज्ञान में प्रतिध्वनि का सिद्धांत है, जैसा आप बोलोगे वैसा रिपीट आएगा, आत्मा बोलोगे आत्मा आएगा, और जैन शासन में प्रतिदान का सिद्धांत है। हम अपने को अशुद्धता का दान देंगे तो हमें अशुद्धता मिलेगी, हम अपने को अशुभ भाव का दान देंगे तो उसके फल में अशुभ मिलेगा, हम अपने को शुभ भाव का दान देंगे तो बाहर में शुभ योग मिलेंगे। मतलब जीव अपने साथ, हम दूसरे के साथ कुछ नहीं करते, हमें लगता है ऐसा कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। अरे कौन उपकार करे, कौन अपकार करे, सच में हम अपने परिणाम से अपना ही बिगाड़ करते हैं, अपना ही सुधार करते हैं। अब ये जरा समझने के, 5 तरह के बाल मरण, 5वां बाल मरण, 4 तो हो गए, इसमें जीव का कुछ चलता नहीं, ऑटोमेटिक होता है ये 4ों मरण, इनको सुमरण नहीं कहा। अब बाल मरण, बाल मरण माने बच्चे का मरण नहीं, बाल माने मिथ्यात्व सहित मरण। आपने सुना होगा बाल तप किया जीव ने अनंतों बार, सुना होगा ना। बाल मरण की यदि हम बात करें आपसे भैया, कभी कभी आपने सुना होगा जीव अपर्याप्तक रह जाता है, सुना है ना, पर्याप्तियां होती हैं, तो 1 महीने का गर्भ ही एवर्सन हो जाता है, 2 महीने का हो जाता है, 15 दिन का हो जाता है, वो तो सबके सब पर्याप्तक हैं। जैन शासन में अपर्याप्तक मरण तो वो कहलाते हैं जिसका जीव को उस मां को मालूम ही नहीं पड़ता, गर्भ में वो जीव आता है और अंतर मुहूर्त रहता है और अंतर मुहूर्त होने से पहले ही देह नष्ट हो जाती है, वो तो मां को मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसे मरण अनंतों वार की है, वो चर्चा नहीं है ये, उसकी तो यहां चर्चा ही नहीं करी है। फिर एक माह वाला, दो माह वाला मरण, तीन माह वाला मरण, ऐसी वो सब पर्याप्तक मरण है। बाल, अब बाल मरण कैसे समझ में आए, जब ये समझ में आए कि बच्चे कितनी तरह के होते हैं, तो पांच तरह के बालक होते हैं, पांच तरह की। सबसे पहले कहा अव्यक्त बाल, अब इसको व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल, चारित्र बाल, एक एक को समझाया। जो धर्म अर्थ काम इन कामों को न जाने, जिसका शरीर इनके आचरण के लिए समर्थ ना हो, वह अव्यक्त बाल है। माने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चीज को नहीं जानता, अव्यक्त है, जिसकी बुद्धि ज्यादा सही नहीं हुई है, वो अव्यक्त बाल कहलाता है। और ऐसा भी अव्यक्त बाल हमारा अनंतों जन्मों में हुआ, बच्चे को क्या भेद रहता है, को तो बच्चा गंदी चीज खा ले, नाखून खा ले, नाक की गंदगी खा ले, ऐसे अनंतों बार किया। जो लोक के और शास्त्र के व्यवहार को ना जाने तथा बालक अवस्था हो, वे व्यवहार बाल है। लोक में जिसको बालक कहते हैं वो बालक है। पहले बालक और दूसरे बालक में क्या अंतर है? पहला बालक तो उम्र से बहुत छोटा है, लोक में ही बालक है। दूसरा थोड़ी उम्र तो हुई है लेकिन जानता कुछ नहीं है, वो पहला वाला बालक है। ऐसी अनंतों वार जन्म इसमें आएगा। यहां जो सब बैठे हैं सब बालक हैं, 80 वर्ष का व्यक्ति भी बालक है, क्योंकि जिसको हित अहित नहीं पता वो सब बालक है। मेरा हित किस में है ये नहीं पता, वो क्या है? बालक है वो। हम यहां रत्नत्रय का मार्ग समझते हैं, गुरुदेव का मार्ग समझते हैं। अभी निशंकित अंग आया ना, अच्छा बताओ एक घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा, ये केवली भगवान के ज्ञान में पक्का आया है या नहीं? बोलो, आया है। और इस पूरी पर्याय में हमारे साथ क्या घटना चक्र घटित होगा, वो भगवान के ज्ञान में इस समय अभी भी सीमंदर भगवान के ज्ञान में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम चिंता में क्यों मरे जा रहे हैं? हम जितनी वर्तमान पर्याय में हमारी तन्मयता देखी जाती है, उतनी तन्मयता आत्म कल्याण में नहीं देखी जाती, उससे प्रतिफलित होता है। कल कृपालु देव के पत्र में आया कि हम कैसे माने कि जो तेरे वर्तमान में पुरुषार्थ देखा जा रहा है, क्योंकि तू जितना पुरुषार्थ इस पर्याय के लिए कर रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि अनंत भव को छेदने के लिए एक भव में अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए, तब तो वो अनंत भव छेद पाएगा जीव। लेकिन इसी पर्याय की ओर ही झुकाव ज्यादा है, इसी पर्याय की ओर ज्यादा चिंता है उसको, उसे सर्वज्ञ का विश्वास नहीं। अरे निशंकित अंग पर्याय में व्यक्त हो जाए, संकिति हो जाए, स्वरूप की प्रतीति हो जाए, पूरी धरती भी हिले, ये छत माथे पे गिर पड़े और चेहरा मुस्कुराता रहे उसका, रंच मात्र कोई अंतर नहीं पड़े, सूर्य की तरह खिलता रहे वो, क्योंकि मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं है ना, मर गए मारने वाले कौन मारेगा मुझे, मैं तो अमर चैतन्य तत्व हूं, ऐसा उसके अंदर विश्वास जागृत होता है। याद रखना, जिसे पूर्व पर्याय का विश्वास नहीं है, मैं अगली पर्याय में देह छोड़कर जाऊंगा इसका विश्वास नहीं है, उसे आत्मा के शाश्वत पने का भी विश्वास नहीं है। भाई मैं शाश्वत हूं तब तो आगे जाऊंगा, यदि मैं शाश्वत ही नहीं हूं तो आगे कहां जाऊंगा? वस्तु के यथार्थ ज्ञान रहित ज्ञान बाल है। अभी तीन तरह के, ज्ञान बाल, दर्शन बाल, चारित्र बाल। वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, सत्य क्या है यह नहीं है पता, मुद्दे है मुझसे भिन्न है या अभिन्न है ये नहीं पता, ईंट पथराव में मोहब्बत है जीव को, परद्रव्य में जीव का एकत्व है, परिभ्रमण करता है संसार में चारों तरफ। और तत्व श्रद्धान रहित मिथ्या दृष्टि दर्शन बाल है, और चारित्र रहित प्राणी चारित्र बाल है। याद रखना, किसी को सम्यक श्रद्धा भी हो गई हो और चारित्र नहीं हुआ हो तो उसको भी बाल संज्ञा दिया है भगवती आराधना में और कुंद आचार्य ने स्वयं ने। इसलिए सम्यक दृष्टि के देह छोड़ने को पंडित मरण नहीं कहा बल्कि बाल मरण कहा है, और जो अज्ञानी देह छोड़ता है उसको बाल मरण कहा है। बाल मरण, राजा श्रेणी का देह छूटा तो उनके पुत्र ने ही जेल में डाला, देखो तो सही कैसी कर्मोदय की व्यवस्था। और अंतिम समय उन्हें ऐसा लगा, मां ने बताया बेटे को कि जिस पिता को तूने जेल में डाला है, जब तेरे फोड़ा हो गया था शरीर में तो तेरे पिता ने उस पीप को मुंह से चूसा और तुझे स्वस्थ किया। ये सुनकर उन्हें पिता के प्रति राग जागा और जेल में उन्हें निकालने गए, लेकिन ये डर गई, ये सोचे मुझे मारने आ रहा है, तो जेल में जो सलाखें होती हैं वो अपने माथे में मार ली तेजी से और देह छोड़ के प्रथम नरक गए। इसलिए समाधि मरण का संबंध संयम से है। संयम का अंश हल्का सा जागना चाहिए, प्रत्येक सम्यक दृष्टि को समाधि हो ही जाए ये नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही नहीं है, उसकी तो बात ही मत करना, वहां तो समाधि की कोई स्पर्श ही नहीं किया। लेकिन जहां सम्यक दृष्टि शांत परिणाम पूर्वक रत्नत्रय जिसको व्यक्त हुआ है, मेरु जैसी आपत्ति भी आ जाए, ऐसा लिखा रतनकंड सावकाचार में, शरीर के सहस्र खंड हो जाने पर भी आत्मा की श्रद्धा अटल मेरु जैसी बनी रहे, मैं तो आत्मा हूं ऐसा। ऐसे ये विषय कभी कभी लेना चाहिए, इससे पुरुषार्थ जागता है, दृढ़ता आती है। हमको जरा भी कोई रोग आ जाए, जरा भी कोई प्रतिकूलता आ जाए तो हमारा चेहरे पे मलिनता हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, अरे जिन शासन पाया है अब काय की घबराहट है। इसलिए दर्शन बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल। आप जानते हैं रामचंद्र जी और सीता जब अयोध्या की विजय करके आई तो लंका को, अयोध्या में देशभूषण और कुलभूषण केवली आए हुए थे, उनके समवसण में गई कि प्रभु हम तो जगत से विरक्त हो गए, अब ये राज्य हमें नहीं चाहिए। तो रामचंद्र जी ने पंचम गुण स्थान संयम अंगीकार किया, सीता ने भी पंचम गुण स्थान अंगीकार किया, समकिति तो थे, रामचंद्र जी तो छाई समकिति थे। तो रामचंद्र जी ने सोचा भैया लक्ष्मण को भी व्रत दिला दे, तो देखा पीछे मुड़के तो लक्ष्मण जी गायब, बड़ी समस्या। बाहर आए भगवान का उपदेश सुनकर तो लक्ष्मण जी को बोला तुम कहां चले गए थे, बोले आप अयोध्या जाएंगे ना, राजा थे आपकी व्यवस्था कर रहा था जाने की। बोले व्यवस्था कर रहे थे, कोई भी कर लेता व्यवस्था, भगवान का उपदेश तो सुनते, बोले कल सुनेंगे। तो जब जब जाए और संयम की बात आए तब तब लक्ष्मण उठ के चले आए। भगवान से रामचंद्र जी ने पूछा कि प्रभु मैं सीता से अधिक प्रेम लक्ष्मण से करता हूं, मैं लक्ष्मण के अहित की कभी नहीं सोच सकता, मैं जानता हूं कि लक्ष्मण से मेरा कितना प्रेम है, फिर भी जब भी संयम की बात आए तो लक्ष्मण संयम अंगीकार करने की बात क्यों नहीं करती। तब भगवान ने उत्तर दिया कि लक्ष्मण को तृतीय नरक का बंध हो गया है, इसलिए तुम करोड़ों कोशिश कर लेना माथा फोड़ फोड़ के मर जाना, उनको कभी संयम अंगीकार करने का भाव नहीं आएगा। अरे जिनके सम्यक्त्व हो उनके भी मलिन परिणाम से सम्यक्त्व छूट जाता है। धवला में सम्यक्त्व के 6 भंग आए हैं, 10 मिनट है, जरूर समझने जैसे हैं। हमको अभी सम्यक्त्व भी नहीं है तो हमें कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता है, लेकिन एक जीव को यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो भी 6 कारण से सम्यक्त्व छूट सकता है। कितने? 6 रीजन, 6 रीजन है जिससे सम्यक तो छूट सकता है और सैकड़ों का छूटा है। उसमें लक्ष्मण भी है, श्री कृष्ण भी है। तो उसमें पहला बताया मिथ्यात्व का उदय, ये निमित्त प्रधान कथन है। उपशम सम्यक्त्व का काली अंतर मुहूर्त है, और आगे तीव्र पुरुषार्थ किया नहीं, जैसे कोई पूंजी कमाए और कमाकर फिर सो जाए तो पूंजी नष्ट हो जाती है। वैसे ही सम्यक्त्व पैदा करे और उसे बराबर लगातार पुरुषार्थ ना करे तो वो सम्यक्त्व भी उसका नष्ट हो जाता है, ऐसा है। इसलिए पुरुषार्थ उसको बारंबार करना पड़ता है उसको। तो एक तो मिथ्यात्व का उदय, दूसरा रीजन क्या बताया, दूसरा रीजन बताया पांच पापों में किसी एक पाप की अधिकता हो जाना। सोचो हम तो सम्यक दृष्टि हो गई, हिंसक हो जाए, महान झूठ बोलने लगे, कुशील आदि में लीन हो जाए, परिग्रह इत्यादि में इतना आसक्त हो जाए कि उसका स्व का विचार खत्म, तो महापाप के साथ सम्यक तो नहीं रह सकता, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एक रीजन बताया किन्हीं कसायों में एक कसाय तीव्र हो जाना, क्रोध आदि सारे प्राणियों को छोटा समझने लगे, निगोदिया समझने लगे, संकिति की पहचाने आ जाए ना, करुणा होनी चाहिए उसके अंदर। हम सच कह रहे हैं आपको, उपदेश से व्यक्ति नहीं सुधरता, व्यक्ति को कलेजे लगाने वाला चाहिए व्यक्ति, वो उस सामने वाले श्रोता को ये भान होना चाहिए कि ये मां की तरह मेरा हित चाहता है, और ऐसे जीव ही दूसरे के सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। जैसे मां बेटे का कभी अहित नहीं चाह सकती, ऐसी ही जहां ज्ञानी है वो प्राणी मात्र का कभी अहित नहीं चाह सकता, लेकिन उसको तो क्रोध आ जाए, मान इत्यादि इतना पहाड़ पे चढ़ जाए तो सम्यक्त्व का लोप हो जाता है। तीन कारण। चौथा कारण कहा मिथ्या दृष्टि राजा की सेवा, क्योंकि सम्यक्त्व होने से पुण्य बढ़ेगा तो राजादि उसको बुलाने लगेंगे, राज दरबार में जाने लगेगा, और धीरे धीरे मिथ्या दृष्टि राजा की सेवा ही करने लगे लोभ लालच में, तो सम्यक्त्व उसका भंग हो जाएगा। पांचवा कारण बताया भीड़ानुवादी, क्योंकि पुण्य बढ़ने से उसको भीड़ सुनेगी, जगत सुनेगा, तो भीड़ का मनोरंजन करने लगे। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी डॉक्टर अपने मनोरंजन के लिए या मरीज के मनोरंजन के लिए वो मरीज के हिसाब से चलेगा या उसके रोग के हिसाब से चलेगा? बोलो। उसी तरह ज्ञानी वक्ता वो कि जो सभा के हिसाब से ना चले उसके रोग के हिसाब से चले। भाई उसका रोग बढ़ाना है या रोग घटाना है? इसलिए जो लोकप्रिय होता है वो सत्यवादी नहीं होता, और जो सत्यवादी हो वो लोकप्रिय नहीं होता। नीति है ये, लोकप्रिय माने लोग तो उसे पसंद करेंगे कि जो उनके मन की बात कहे जगत में। तो एक ही पांचवा कारण बताया भीड़ानुवादी होना, और छठा बताया किसी तत्व में संशय पैदा हो जाना। आज गुरुदेव का आया था प्रवचन में, यही हो जाए, किसने देखा मेरू पर्वत, अरे सब पंडित लोग बहका रहे हैं, नरक वरक कहां है नीचे, धरती तो फाड़ के देख ली वैज्ञानिकों ने, कुछ नहीं है नीचे, ऊपर भी कुछ नहीं है, चांद सूरज घूम रहे हैं, जबरदस्ती विद्वान बहका रहे हैं, ये तत्काल मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तत्काल। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने मुमुक्षु समाज में जो ये कहते हैं द्रव्यानुयोग तो सत्य है पर ये कर्णानुयोग भूगोल इसमें तो थोड़ा ऐसा मन को जचता नहीं है बात ये, तो उसके प्रगट माथे पर लिखा है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। समझ में नहीं आना ये जुदी बात छे, पर उसमें संशय पैदा हो जाना ये जुदी बात है। संशय तो बारहवें गुण स्थान तक हो सकता है जब तक केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है ये कहीं गलत तो नहीं कहा, ऐसा संशय पैदा हो जाए तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। और ये सब क्या है? बाल मरण है। क्या है? बाल मरण है। ऐसा संशय करके देह छोड़े, ये पहरा पूरा कर देते हैं, इनका मरना सो बाल मरण है। यहां प्रधान रूप से दर्शन बाल ही ग्रहण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अन्य बालपना होते हुए भी दर्शन पंडितता के सद्भाव में पंडित मरण ही गिनते हैं। बाहर में वृद्ध हो लेकिन मिथ्या दृष्टि हो तो बाल मरण है। सारी दुनिया को उपदेश सुनाए और खुद को ही आत्मा पे संशय हो तो बाल मरण है। भैया किसी व्यक्ति की ओर नजर मत करना, अंतिम अंतिम समय ऐसी ऐसी दशाएं देखी हमने तो, हमारे मोहल्ले में ही, हमारे घरों में ही सारी जिंदगी तत्व ज्ञान का पाठ पढ़े और अंतिम समय बुद्धि इतनी विक्षिप्त हो जाती है कि रात में ही रात का समय हो, दिन हो गया, चाय दो, दूध दो, रोटी दो, लो भैया ने रोटा दे दो, इन्हें रोटी खाने की बहुत इच्छा हो रही, लो तुम 10 मन रोटी खा लो, इतना, क्योंकि वो आगे की पर्याय का द्योतक है कि वो कौन सी पर्याय में जा रहा है। ये नियम है, अंतिम अंतिम समय वैसे परिणाम हो जाते हैं कि जैसी उसको गति आयु का बंद हो गया हो ऐसा रहता है, और लेकिन देह में अनंत बीमारियां हों, क्योंकि उदीर्णा होगी अंतिम समय असाता के उदय में, याद रखना सच कह रहे हैं, इसलिए अभी साता के उदय में हमने देह से भिन्नता का भेद विज्ञान नहीं किया तो अंतिम समय कुमरण होने में कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रतिदिन जो स्वाध्याय होता है इसको अकेला स्वाध्याय मत समझो, इसको आराधना समझो कि हम आराधना करने आए हैं। अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम आराधना के लिए अलग समय निकाले, अब इससे बड़ी आराधना और क्या होगी। बैठ जाओ, आज रविवार है, कहां जाना है मुझे, अरे प्लानिंग कर करके मर गई, कहां जाना है, क्यों जाना है, बस मैं तो आज एक घंटा क्या अंतर मुहूर्त लगे निहाल हो जाए जी, कोई कल्पना है क्या, ये फैक्ट है, ये अनंत तीर्थंकरों की बात है। यहां प्रधान रूप से दर्शन बाल का ही ग्रहण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अन्य बालपना होते हुए भी दर्शन पंडिता के सद्भाव में पंडित मरण ही है। दर्शन बाल का मरण संक्षेप में दो प्रकार का कहा है, इच्छा प्रवर्त अनिच्छा प्रवर्त, अग्नि से, धूम से, शस्त्र से, विष से, जल से, पर्वत के किनारे पर से गिरने से, अति शीत उष्ण बाधा से, क्षुधा तृषा के रोगने से, जीव उखाड़ने से, वृद्ध आहार करने से अज्ञानी इच्छा पूर्वक मरे वे इच्छा प्रवर्ते हैं, इसको आत्महत्या कहते हैं। आप जानते हैं आत्महत्या भी आत्म प्रेम को दर्शाता है, नहीं आया समझ में, क्योंकि वो अपनी आत्मा को कष्ट देना नहीं चाहता और वो ये समझता है कि यदि मैं जीवित रहा तो मुझे कष्ट मिलेंगे, इसलिए वो मरना चाहता है। उसे ये पता नहीं है कि आत्मा अजर अमर तत्व है, तू एक दुख से दुखी होकर मरेगा तो तुझे अनंत दुख मिलेंगे, इसलिए प्राणी हर पल मरने की सोचता है, मरने की सोचता है, मैं मरूं। ऐसा जब मैं बहुत छोटा था जब मुंबई पहली बार आया था तो 9th क्लास में पढ़ता था, उस समय हमने अखबार और टीवी में एक समाचार सुना था कि कोई हीरोइन दिव्या भारती बिल्डिंग से छलांग लगा के नीचे मर गई, मैं 8th क्लास में पढ़ता था, ये क्या है भाई, तो मुझे न्यूज का बहुत शौक था, खोजने शोधने का, तो पढ़ा उसमें, मालूम पड़ा कोई सिनेमा उसका फ्लॉप हो गया, और सच पूछा जाए कोई ये सोचता हो कि अनुकूलता मिल जाने से जीने की कला मिल जाती है, ऐसा नहीं है, बाहर में अनंत अनुकूलताएं बढ़ती जाएं तो भी ऐसा हो सकता है कि प्रतिकूलता के और ढेर सामने खड़े होते चले, इसलिए जैसे जैसे जीव के पुण्य का उदय बढ़ता है महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, अभिमान बढ़ जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और इच्छा पूरी होती नहीं है बिना पुण्य उदय की तो आत्महत्या करने के लिए भागता है, इसको सप्तम नरक का बंध होता है आत्महत्या वाले को, यद्यपि इस काल में नहीं जाता पर घोर वेदना तथा जीने का इच्छुक हो और मर जावे वह अनिच्छा प्रवर्त है। इच्छा जीने की थी, अंतिम समय किसी की 4 बेटी हो, 5-2 लड़के हो, पहली को बुला दो, दूसरी को बुला दो, तीसरी को बुला दो, हाय हाय कर रहे हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और वो भी इसलिए भाग भाग के आ रहे हैं कि कोई पिताजी रहस्य बता देंगे माल कहां छिपा है, और वो बेटा खड़ा है, दूसरा खड़ा, तीसरा खड़ा, चौथा खड़ा, किसी को भी ये नहीं पड़ी कि इनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं, एक देव स्तुति है उसमें ऐसा लिखा, हे सर्वज्ञ परमात्मा मुझे पता है आप किसी को कुछ दे नहीं सकते और हम किसी से ले नहीं सकते क्योंकि हम भी आनंद वाले हैं और अब भी आप आनंद वाले हैं, तथापि आप मुझसे ये कहो मैं आपका भगत हूं तुम मुझसे कुछ मांग लो तो प्रभु मैं आपसे एक चीज मांगता हूं कि जब मेरा देह छूटे तो मेरे आगे मोहियों की सेना ना हो, मेरे आगे साधर्मियों की सेना खड़ी हो, मुझे तत्व ज्ञान सुनाने वाले खड़े हो, मुझे देह से भेद विज्ञान कराने वाले खड़े हो मेरे सामने, जिससे कि मेरा दोबारा कुमरण ना हो और संसार में मैं पुनः जन्म मरण के लिए नहीं आऊं। ये प्रसंग कहां से चला था कि हे मुनि, तूने बिना भाव के आज तक अनंत जन्म मरण किए। उन मरणों की चर्चा चल रही थी, बस पांच ये मरण ही हो पाए, आगे फिर और कैसे कैसे मरता है जीव, इंद्रियों के वश, कसाय के वश, वेदना के वश, ऐसे फिर बहुत विषय है। आप पर समय हो तो इसको पढ़ना सरल है, आप स्वयं भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ये विषय रह गया है तो आप इसे इसको पढ़ लेना, वरना सल्ले लगी रहेगी आपको मन में। एक पेज का है, अभी अपना समय हो गया।